نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير تعرف حبيب آج اس کا ڈے نمبر 6 ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مختلف چیزیں ہم دیکھ رہے تھے انہی میں سے ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصائص اور جو آپ کی خوبیاں ہم دیکھ رہے تھے جن کے فضائل آپ کہہ لیجئے تو اس میں سے آج ہم پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی تک پڑھی ہے میں ان کی صرف چند جملوں میں دہرائی کروا دیتی ہوں اللہ کے نبی کی خاص باتیں یعنی اسپیشلٹیز آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی آپ کا نبی ہونا لوح محفوظ میں لکھا جا چکا تھا پھر دوسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بہترین زمانہ تھا اگلی بات یہ کہ آپ بہترین خاندان میں سے تھے اور اسی طرح اگلی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کچھ حصہ آسمانوں پر فرض کیا گیا تھا پھر تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی آپ نے اور اگلی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا یعنی کہ وہ کتاب چینج نہیں ہوگی پھر اس کے بعد کیا تھا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے رسول تھے آپ پر ایمان لانا واجب ہے اور آپ کی بعثت اہل ایمان پر احسان عظیم تھی اللہ کا پھر آپ ان لوگوں میں تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے نگاہ ڈالی تو آپ کو بہترین دل والا پایا یعنی آپ اور آپ کی امت بہترین دل کی حامل لوگوں میں آئی پھر آپ سراپا رحمت تھے مومنین کے لیے منافقوں کے لیے کفار کے لیے اور امت کے لیے امان تھا آپ سب نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے پھر آپ پر بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض نہ تھا اور آپ کی شریعت قیامت تک قائم رہے گی یہاں تک ہم نے کیا تھا آج ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے پیج نمبر 36 ہے اگر آپ بک میں سے دیکھ رہے ہیں ادروائز یہ ہے کہ دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انبیاء کرام کے اوپر 6 مختلف فضیلتیں یعنی اسپیشل تھنگس دی گئی تھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکلیں ہیں سوا جہاں کوئی خیر کے ساتھ چیز زیادہ ملتی ہے نا تو وہاں اللہ کی طرف سے لائبلٹیز کے ساتھ پھر رحمتیں بھی مل جاتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دیگر صحابہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فضیلتیں دی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامی الکلم ونصرت بالروب وحلت لی المغانم وجعلت لی ارد طہورم و مسجدم و ارسلت الی الخلق کافتا و ختم بی النبیون مجھے انبیاء کرام پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی مجھے جامع کلمات دیے گئے دشمن پر روب کے ساتھ میری مدد کی گئی میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ساری زمین میرے لیے پاک اور مسجد بنائی گئی مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے اب آپ دیکھیے کہ آپ اس ساری چیز کو نہ جانے کس سناریو میں دیکھیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں ہمیشہ لوگ جب بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں اور ان کے اندر کوئی خاص چیز دکھتی ہے نا تو ان کے مرید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملے کو اس طریقے سے محسوس کرتے ہیں کہ واہ جی واہ وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں کیا یہ سارا کچھ پڑھنے اور سننے اور جاننے کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے ہی معروب ہیں جتنے ہم دوسروں سے معروب ہوتے ہیں کیا ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا جڑنا ہمیں خوشی دیتا ہے اگر دیتا ہے تو الحمدللہ دیتا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ آپ کو نہیں دیتا ہوگا کیونکہ آپ دیکھیے کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے लोग अपना ताल्लुक जोड़ने के लिए कहाँ से पापड़ बेलकर ताल्लुक जोड़ लेते हैं, फलां के जी रिश्तेदार हैं, कभी सदर वजीर मशीर कोई हो तो दूरदार के भी लोग उसके रिश्तेदार हैं। इस तरह उलमा से लोग नस्बतें जोड़ते हैं, मशहूर लोगों से जोड़ते हैं, गुलकारों अदाकारों से लोग जोड़ते हैं, कहीं ना कोई नसब जुड़ जाए तो क्या हमें अपने प्यारे नबी के साथ नस्बत महसूस होती। फिर आप देखिए कि जामिल कलिम, इसकी बीसियों मिसालें हम कुरान में पढ़ते हैं। दो लफ्ज़ हैं तहादु तहाबु, हदीस के दो लफ्ज़ हैं तहादु तहाबु, तोहफे दो मोहब्बत पैदा होगी। अब ये हम होते तो लंबा चौड़ा कसीदा गा के फिर कहते तोहफे देने से बड़ी मोहब्बत बढ़ती है, तो अल्लाह के नबी छोटे से लफ्ज़ों में बड़ी बात कहते थे। हम खुद को चेक करें, मैं भी चेक करूँ, आप भी चेक करें, और जितनी लंबी बात करेंगे उतने फंसेंगे। एक जुमला वापस करें, खत्म। एक्चुअली ये, एक्चुअली वो, नहीं ऐसे नहीं, वो हो गया और ये हो गया। गिव इट बैक, क्या हुआ, गिव इट बैक, खत्म। दे दीजिए, ले लीजिए, रख लीजिए। दो लफ्जों में बात किया करें अपने बच्चों से, कम ऑन इधर आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ ना, फिर आओ, खाना ठंडा हो रहा है ना बेटा, ना आओगे तो बुरी बात होगी, बेटा मैं आपकी अम्मी, अम्मी की बात मानते हैं, और अम्मी की बात ना मान, उसको याद ही नहीं रहना कि आपने ये कहा था इधर आओ। वो बात नहीं लोगों को याद रह रही होती, वो बातें लोगों को हम भुला देते हैं जो कहनी होती है, और इर्द गिर्द याद रह जाता है। फिर दूसरी बात आप देखिए कि माले गनीमत हलाल, दुश्मन पे मदद रोब के साथ, क्या आज हम समझते हैं अल्लाह के नबी के रोब को? कभी इमेजिन तो करके देखिए इस चीज़ को। आज तो अल्लाह के नबी की उम्मत खुद ही मरूब हुई पड़ी है, वो कहाँ किसी के रोब में आएगी, या क्या होगा और कैसे होगा। तो बहरहाल आप देखिए कि नबी सल्लम की ये सारी खूबियाँ सुनने और जानने के बाद हमें ज़रूर इन चीज़ों को अपने सामने रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लम से मोहब्बत को महसूस करके उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के, और इसी तरह से उसको आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत जगह देने की कोशिश किया करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर दिल में तो प्यार है। ये तो कोई कह नहीं सकता कि मैं नबी सल्लम से मोहब्बत नहीं, लेकिन लाडले हैं, बिगड़े हुए हैं। वो जैसे वो बच्चा जो लाडला होता है ना, वो कहता है सब मानेंगे, मैं नहीं मानूंगा, मेरी बात माँ बाप माने और बाकी मेरे आप अम्मा बाप की मानते नहीं मानते। ये जो हम कहते हैं बच्चा बिगड़ गया या बिगाड़ दिया, वो क्या होता है, बच्चे को आदत पड़ जाती है अपनी मनवाने की। अगर बचपन में आप उसकी मानेंगे, वो बड़े होके कभी आपकी नहीं मानेगा, लिख के रख लीजिए। बच्चे को टेम करना हो या जानवर को टेम करना हो, एक ही तरीका है। कहते हैं जिन का बच्चा काबू में करना हो या अपना काबू में करना, मनवाइए, मानिए नहीं। हम प्रेशर ही नहीं ले सकते, हाय हाय रोना पड़े, हाय हाय ये ना हो जाए, हाय भूखा ना रह जाए, 10 खाने उसके लंच बॉक्स में डालकर हम भेजेंगे, कोई एक तो खा ले, वो एक भी नहीं खाएगा, दे ही एक, खाएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा तो वही खाएगा। यानी हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते, और मोहब्बतों का प्रेशर बहुत ही इंसान को कह लीजिए कि बेबस कर देता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि माले गनीमत हलाल, सहाबा कराम की ज़िंदगी देखिए, और इस्लाम के अंदर जो गज़वे खैबर के बाद सुकून और पीस आया, वो माले गनीमत मिला था ना, ज़मीनें मिली, बागात मिल गए, बाद में कैसरो किसरा के सोने चांदी के हीरों लगे, ताज और कंगन आते थे, इस्लाम की कुव्वत थी। कहाँ से आएगा इस्लाम के पास पैसा? अल्लाह के नबी ने कोई टैक्स तो नहीं थे लोगों पर लगाए हुए ना। तो ये जो चीज़ें होती है ना, जो कि आप दीन की मामले में जो भी चीज़ आपको मिले दुश्मन से, तो वो हलाल है, पहली उम्मतों में जला दिया जाता था। ये क्या दुश्मन से माल लिया, ये तो मनहूस होगा, इसको ज़ाया कर दो, इस्लाम में ऐसा नहीं। और ये आज तक इस्लाम की ताकत है। आप पूरी दुनिया में हिस्ट्री मुसलमानों की पढ़कर देखिए, जिस जगह मुसलमान गए बग़ैर किसी बर्बरियत और जुल्म और छीना झपटी के, आप उनकी जगहों के मालिक बन गए। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमें समझ आती हैं कि इस्लाम किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखता है, और इन सारी चीज़ों में अपने आप को हमें भी हमेशा मुहासबे के लिए पेश करना है। फिर इसी तरह से आप देखिए सारी जगह मस्जिद है, ये नहीं मतलब कि मस्जिदें ना बनाओ या मस्जिदें खाली छोड़ के घरों में नमाजें पढ़ो, ये नहीं मतलब, मुराद ये कि नमाज नहीं छोड़नी इसलिए कि मस्जिद है नहीं है, मस्जिद से दूर हो। सिर्फ तुम्हारा दीन बंद कमरों का दीन नहीं है, बल्कि वो अंदर का दीन है। और इसी तरह आपसे आप देखिए कि सारी इंसानियत के लिए आप है, रहमतुल आलमीन है, और नबूवत ख़त्म, खातमुन नबीयिन। अगर नबूवत का सिलसिला आज तक जारी होता तो ज़रा सोचिए क्या क्या मसले, क्या क्या मुश्किलात ना बनती दुनिया में। तो इन सारी चीज़ों की रोशनी में कहिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। خاص طور پہ اللہ کے نبی کی جو کوششیں تھیں اس دین کو ہم تک پہنچانے میں، اس کو سامنے رکھ کر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم ادا کر نہیں سکتے. شاید اپنے ماں باپ کا حق کسی درجے پہ انسان کر دے ادا جو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق، استاد، مربی، مزکی کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ سوچیے اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو آج کیا ہوتا انسان؟ بدو. اور بدو کو برا لفظ نہیں تھا اس دور میں، دیہاتی کو کہتے ہیں، کم پڑھے لکھے، بات کرنی نہ آتی، کچھ نہ ہوتی، ہم اپنے آپ کو کبھی بھی اس درجے کے محسوس نہ کرتے. بہرحال اگلی خوبی پہ چلتے ہیں. اللہ کے دوست تھے آپ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لقب ملا جو کہ باقی لوگوں کو نہیں ملا. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی ابرو الا کل خا. خا کا لفظ ہے، ذرا اس کو سننے میں بھی اور میں بولنے میں بھی ذرا سی احتیاط کر لوں کیونکہ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے. آپ نے فرمایا کہ الا انی ابرو الا کل خل من خله ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ان صاحبکم خلیل اللہ. آگاہ ہو جاؤ، بے شک میں ہر ایک دوست کی دوستی سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور اگر میں کسی کو اپنا دلی دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست ہیں. چھوٹی بات ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اللہ کی دوستی کسی کو مل جائے، اس کے بعد پھر ساری دنیا ہوتی ہے دشمن تو ہوتی رہے، ہمیں ان سے لینا بھی کیا ہے؟ کوئی دے ہی نہیں سکتا، کسی کے پاس ہے کیا؟ کوئی کیا دے گا؟ تو جب اللہ کے نبی اللہ کے دوست اور وہ یاد کیجیے، آیت اللہ ولی الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو آج بھی یہ لفظ ہم سب کے لیے ایک خوبصورت بات ہے. کیا ہم بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں؟ کیا ہم میں سے بھی کوئی اس درجے پہ پہنچ سکتا ہے؟ بالکل پہنچ سکتا ہے. ہمارے آج ولی اللہ لفظ کے ساتھ خرافات ہیں، پانی پہ چلنے والے، کبھی سوئے ہی نہیں، ساری عمر کھانا ہی نہیں کھایا. یہ باتیں ایسی نہیں تھیں، اللہ کے نبی کھاتے بیتے 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 اور باقی بھی چیزیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. شاہد، بشیر اور نذیر اللہ نے آپ کو بنایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 ہے. اب دیکھیے، ایک ہی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار مختلف شانوں کا تذکرہ کر دیا اس آیت میں. اور اسی طرح شاہد اور مبشر کے بعد آپ دیکھیے کہ روشن چراغ آپ کو کہا گیا. وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیرا، اسی سے اگلی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی. اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. تو یہ خوبیاں آج امت محسوس کرے تو یقیناً بہت ہی خوشی محسوس کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور خوبی ملی، آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. سورۃ الم نشرح کی آیت نمبر 4 ہے. اور آج بھی دیکھیے، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان یا اقامت یا اس کے علاوہ درود شریف کی صورت میں یا آپ کے دین کے پھیلانے کی صورت میں آپ کا نام بلند ہو رہا ہے. دی ہنڈرڈس میں بھی سب کے اندر ایک غیر مسلم سے اللہ نے آپ کا نام بلند کرا دیا، تو اللہ کو کیا مشکل ہے اپنے نبی کے نام کو بلند کرنے میں. پھر اسی طرح سے حضرت ابن عباس نے اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا کہ اذان، اقامت، تشہد، جمعہ، عیدین کے خطبوں یعنی خطبہ نکاح میں مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر فرشتوں کے ہاں آسمانوں میں اور زمین میں اور مومنوں کے نزدیک اور قیامت کے دن بھی آپ کا ذکر بلند کریں گے کہ آپ کو بلند درجات اور مقام محمود سے نوازا جائے گا. دعا پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد، وَبَاسُ مَقَامًا مَحْمُودًا نِلَّذِي وَتَّلَا، کچھ اس طرح کے الفاظ جو آتے ہیں تھوڑے کم و بیش فرق کے ساتھ. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انسانوں میں سے ہر مقام، ہر انسان کے مقام سے بلند ہے. پھر آپ کے ساتھ ایک اور خاص چیز کیا تھی کہ آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے گئے. قصور کثر سے، کمی بیشی، بشریت کے ساتھ یا کوئی بھی ہو. اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. बेशक हमने आपको खुली फतह अता फरमाई ताकि अल्लाह आपकी अगली पिछली तमाम कमी बेशी से दरगुजर फरमाए। अल्लाह पर इस पर कई शिकालात आते हैं लेकिन हम इसके ज़ाहरी लफ्ज़ों पर क्यास करते हैं, जो अल्लाह ने कह दिया वही ठीक है। आपको मुझे इस पर बहुत ज़्यादा बात करने और सोचने की ज़रूरत भी नहीं। फिर एक और आपकी बड़ी ही मारूफ खूबी, खातमुन नबीजीन, आप नबूवत के सिलसिले की आखिरी कड़ी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसली व मसलुल अंबियाई मिन कबली कमसली रजुलिन बना बुनजानन फ़ख़सनहु वाजमलहु इल्ला मौदिया लबीनतिन मिन जाविया मिन जवायाहु फजलन नासु यतूफू नबिही व या जबू न लहू व यकूलू न हल्ला वुदियत हाजिहिल लबिनतु काला व अनल लबिनतु व न खातमुन नबी जीन। मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने एक इमारत बनाई हो और इसे बेहतरीन और खूबसूरत बनाया हो, लेकिन इसके गोशों में से किसी एक गोशे में, गोशा समझ है ना, किनारा बीच में या कोई चीज, एक ईंट की जगह छोड़ दी, यानी ये दीवार तो बनी लेकिन ईंटों के बीच में एक एक जगह खाली छोड़ दी हो। क्या कहते हैं ईंट के लिए, यहाँ लफ्ज़ बार बार हदीस में जो आया है, लबीना, तो बिना कहते हैं इमारत को, तो लबीना हाँ ईंट को कहते हैं। एक ईंट की जगह छोड़ दी तो लोग इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और ताज्जुब करते हुए कहते हैं ये ईंट क्यों नहीं रखी गई। आपने फरमाया तो वो आखिरी ईंट मैं हूँ और मैं ही आखिरी नबी हूँ। इसके बाद लोगों को शक है, हैरत की बात है, ना मानना हो तो ना कोई माने। और ये सही मुस्लिम की रिवायत 5961 है। तो बहरहाल अपने दिल के अंदर से खुरच कर ऐसा कोई वहम ख्याल भी निकाल दीजिए अगर आता है कभी कि अल्लाह के नबी के बाद शायद कोई नबी हो। किसी ने कहा, उलमा में से मुझे याद नहीं कि साइमा कराम में से किसका कॉल है, कि अगर किसी ने कहा कि मैं नबी हूँ, यानी आपके बाद आज के दौर में या माजी में कोई कहता है मैं नबी हूँ, और अगर किसी ने उसको ये कह दिया कि सबूत दिखाओ, तो वो भी काफिर है। इसका मतलब कि हो सकता है कोई, तभी तो तुमने पूछा है ना। इतना सीरियस इशू है और आज उम्मत के यंग नस्लों के आगे एक बहुत बड़ा ये फितना। अल्लाह हम सब की नस्लों के दीन ईमान की हिफाजत कर, कितनी ही मुख्तलिफ कह लीजिए कि चीज़ों के बीच में हमारे बच्चे हैं, अगर हमने उनको इल्म से ना जोड़ा, अगर उनको कुरान सुनना ना दी, उनको अल्लाह के नबी का ये तारुफ ना दिया, मोहब्बत ना दी, तो पता है वो कहीं सोखे खैर है ना। बहुत होते हैं, बहुत सारे लीडर्स, अल्लाह के नबी भी एक लीडर होंगे। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम दिखाई गई थी दुनिया में, ये एक आपकी खूबी थी। हदीस मेराज में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन जमान रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं फ़लम युज़ाइल ज़हरहू हुआ व जिब्रीलु हत्ता अतया बैत अल मक़दिसी व फ़ुतिहत लहुमा अबवाबुस समाई व रायल जन्नत व नार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल उस बुराक की पीठ से जुदा नहीं हुए यहाँ तक कि वह दोनों बैतुल मक़दस पहुँचे। इन दोनों के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, फिर इन दोनों ने जन्नत और जहन्नम को देखा। यह आप तफसील से जब हदीस पढ़ते हैं तो आपको उसमें ये चीज़ मिल जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपको मौजज़ाना तौर पर जन्नत और जहन्नम दिखाई गई। और इससे पता क्या चलता है कि दोनों चीज़ें मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। ये एक अलग बहस है, बहरहाल आपको बहरहाल ख्वाब में भी दिखाएंगी चीज़ें। और मेराज के मौके पे बैतुल्ला से बैतुल मक़दस का जो ज़मीनी सफ़र था ना, उसमें कुछ सीन्स दिखाए गए थे, कुछ लोगों को जहन्नम का अज़ाब हो रहा है या कुछ को जन्नत का। अब ये कैसे हुआ, कैसे हम जाते हैं बैतुल मक़दस से तो मक्का हमें तो नहीं दिखता, हमें कैसे दिखेगा। युमेनूना बिलग़ैब, बस दैट्स इट। ज़्यादा बात सोचनी करनी चाहिए, इतना वक्त ही नहीं है कि हम ऐसी चीज़ों में उलझें। आपको मुझे जो काम करना है, जो जो चीज़ हमें कही गई है, बस उस पर फोकस करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। फिर एक और बहुत बड़ी खूबी जिसका हमारे साथ भी ताल्लुक है, और वो क्या है कि आपकी उम्मत को बयक वक्त हलाक नहीं किया जाएगा। जैसे पिछली कौमें हुई ना, कौमें आज समूद से लेकर आगे वाली कौमें, तो आपकी उम्मत के साथ क्या था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल तो रब्बी, आप अरबी के लफ्ज़ों पे नज़र जमाया करें और आपको देखा करें, बाद में अपने ग्रुप्स के टाइम में इस हदीस को पढ़ा करें जो हम बीच में पढ़ते हैं, इससे इंशाल्लाह रवानी आएगी। क्या कहते हैं आप, साल तो रब्बी सलासन फातानी इस नतनी व मनानी वाहिदतन। क्या क्या मांगा, लिख लेते हैं। नंबर वन, साल तो रब्बी अल्लाह युहली का उम्मती बिस सनती फ़ातानीहा वसालतुहु अल्ला युहलिका उम्मती बिलगरकी फ़ातानीहा وسألته ألا يجعل باسهم بينهم فما نعنيها. मैंने अपने रब से तीन चीजें मांगी तो इसने दो अता कर दी और एक को मुझसे रोक दिया. मैंने अपने रब से दुआ की कि मेरी उम्मत को कहत से हलाक ना करे तो अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की. मैंने ये दुआ की कि मेरी उम्मत को पानी में डुबो कर हलाक ना करे तो अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल की. और मैंने ये दुआ की कि वो आपस में एक दूसरे से ना लड़ें तो ये दुआ कबूल नहीं की गई. आज आप देखिए इसकी दलीलें मिल रही हैं आपको. तो क्या पता चला कि नबी सल्लम की पूरी उम्मत को इकट्ठा नहीं तबाह किया जाएगा. अब देखिए मिसाल है, रिसेंटली पाकिस्तान में सैलाब आया, उसमें काफ़ी लोग अगर हलाक भी हुए तो सब नहीं है, दुनिया के एक खित्ते में एक छोटी जगह. इस तरह कभी जलजला आ गया, कभी कुछ आ गया, पूरी उम्मत यानी कि पूरी मुसलमानों की उम्मत, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है वो मारे जाएं. आप सोचिए अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता तो कितनी जिल्लत और नमोशी की बात थी. और पिछली उम्मतें ऐसी फौत होती थी, अगर उनका कोई बंदा कहीं बाहर था तो वो वहाँ मारा गया था. इस पे पूरा बुरे गाल का एक वाकया भी आता है. तो बहरहाल यह है कि अल्लाह ताला हमें पकचा के रखे. अल्लाहुम्मा ला तक्तुल नबी गज़बिक वला तुहलिक नबी अजाबिक वाफिना कबला जालिक. फिर सबसे बड़ा एक मौजा जो हम सब भी उसको मौजा मानते हैं, जो आपकी खास खूबी थी, वो थी असरा और मेराज. आपको सफर करवाना ऐसा जिसमें आप बैतुल्लाह से बैतुल मकदस तक जमीन पे से गए, इसको असरा कहते हैं. और भी बैतुल मकदस से सिदरतुल मुंतहा या उसके जहां भी अल्लाह ने चाहा आपको ले गए, उसको मेराज कहते हैं, जिसका जिक्र सूरत नजम में और इसरा का जिक्र सूरत असरा या बनी इसराइल में. अल्लाह ताला का इरशाद है, सुभान अल्लज़ी यस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर. पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके इर्द गिर्द को हमने बहुत बरकत दी ताकि इसे हम अपनी कुछ निशानियां दिखाएं. बिला शुबा वही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है. ये आपकी एक खास खूबी थी और ये तो एक अपनी जगह मुसल्लम बात है कि इसके अंदर फिर बहुत सारी फजीलतें थी, जो कि आप जानते हैं कि हजरत जिब्राइल जहाँ रोक लिए गए लेकिन अल्लाह के नबी आगे ले जाए गए. फिर आपने अकलाम के यानी तकदीर लिखने वाले कलमों की आवाज तक सुनी. और आप कहते हैं जब मैं सिदरतुल मुंतहा पे गया तो वहां सोने की टिड्डियां बरस रही थी. वो क्या मंजर होगा, सोच के भी एकदम कुछ जो होता है कि अल्लाह पता नहीं मोमिन की रूह जब जाती है वो भी ये सब देखती होगी. यानी पूरी ऊपर से टिड्डियां बरस रही और वहां मुस्तकिल यही हो रहा है. आप जरा थोड़ी देर के लिए डेकोरेशन कर लें तो कोई मोती सितारे लगा दे, दुल्हन आई तो उस पर पत्तियां फेंक दी. वो क्या मंजर है जहां अभी तक सोना बरस रहा है, हम अपने छोटे से सोने को लेकर रो रहे होते हैं. हम एक तोले तोले पे, एक एक ग्राम पे, एक एक माशे पे हम रोते हैं. अल्लाह कहता है रखो, मैं जंगलों में इतने पत्ते फैला सकता हूँ, मैं जमीन में भी सोना फेंक सकता हूँ. वल्लाह ही उसने सिदरतुल मुंतहा पे रखा हुआ एक पूरा आसमान सोने का. आपको पता है आसमान, हम चार चीजें लेके संभालते नहीं, हमसे संभलती. अल्लाह को कोई जरूरत नहीं मेरी आपकी किसी कोशिश की, आपकी मेरे सोने की चांदी की हीरे की मोती की. अल्लाह के लिए ये सारे बाहर फैले हुए पत्तों से भी हकीर है. ये तो इज्जत दे देता कि लगा लो अपने रस्तों में, कर लो कुछ फायदा हो जाएगा. देने को दे दो, लेने को दे दो. कोई दे के खुश हो रहा है, तुम ले के खुश हो लो. तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हें तो चीज ही मिल रही है ना, अगले को तो वो भी नहीं, वो तो अपनी खुशी से दे रहा है. यानी ये वो चीजें हैं जिससे बंदे के दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई आती है. बहरहाल एक और पढ़ लेते हैं. अल्लाह ताला का आपकी कसम खाना, आप सल्लम की उम्र मुबारक की कसम अल्लाह खाता है. कहा है भला कुरान में, याद है आपको अल्लाह ने क्या फरमाया, ला अमरू का इन्नहुम लफी सकरतिहिम या महून. आपकी उम्र की कसम, इस वक्त इन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपे से बाहर हुए जाते थे. कौम लूत पे जो होमोसेक्सुअलिटी का भूत सवार हुआ था उसकी तरफ इशारा है सूरत हिजर आयत 72 में. यानी जब ये नशे सर पे चढ़ते हैं तो फिर सारी हया बेहयाई सब एक हो जाती है, फिर लाज ही नहीं रहती कि कह क्या रहा हूं, ये कोई ऑनर है, ये कोई खूबी है. एक औरत अपना नाम लेते हुए अपने नाम के साथ वो लफ्ज बोल रही है, आई एम लेस्बियन. ये कोई तुमने कोई तीर मारा है, कोई तमगा लगा है, कोई वार्ड है, कोई टाइटल है, कोई मेहनत की है तुमने इसके लिए. सिर्फ इस वक्त के फितनों में सर चढ़ा हुआ फितना, पैदा होते बच्चे को उसके कपड़ों पर लिख लिख के बता रहे हैं कि तुमने ये बनना है. ये पूरा माफी है जो हमारी आने वाली नस्लों की ब्रेन वॉशिंग कर रहा है. अल्लाह हमें हिदायत दे दे. और हमारी नस्लें फिर गायब हैं, उनको दुनिया ही नहीं सीखने से फुर्सत, उन्होंने आखिरत के मामले क्या सीखने. कभी कभी तो दिल बंद होने लगता है, मैं सोचती हूँ कि हम वाकई नबी की उम्मत हैं. क्या आज हमारे दिलों में ये दर्द महसूस होता है, और दर्द है तो दवा किधर है? आप कहते हैं बड़ा ही दर्द होता है, तो दर्द की दवा किधर है? क्या इतने बड़े हो गए हमारे बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते, उनको हमारी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, उनको हमारी कोई बात समझ नहीं आती, वो अपने आप को अपनी दुनिया में मगन करके खुश हैं, तो क्या हम उनके मामले में अपने बारे में कुछ नहीं सोचते? तो बहरहाल बहुत ही रकीक सा टॉपिक है आज का तो ख़ास तौर पर। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।